शांति। तो अभी कौन से स्नेह में, किसके स्नेह में डूबे हुए थे? दया सिंधु का स्नेह। उसके बीच में कोई और तो नहीं याद आया? मन तो चला जाता कहीं ना कहीं। तो विशेष रूप से ये जो समय चल रहा है अभी, जनवरी मास, अव्यक्त मास, ये विशेष वरदानी मास है। और इसमें विशेष रूप से बाबा का स्नेह निरंतर बरसता रहता है। हमारे पुरुषार्थ को एक लिफ्ट मिलती है। अव्यक्त मास अव्यक्त स्थिति को बनाने के लिए बहुत सहायक होता है, क्योंकि सबकी मानसिकता भी वैसी होती है। चाहे यहाँ रह रहे हैं, चाहे घरों में हैं, ऑफिस में है, लेकिन जनवरी मास की स्मृति आते ही हमारी मनोस्थिति में बहुत बदलाव आता है, हमारे चिंतन में बदलाव आता है, उपराम स्थिति अपने आप बनने लगती है, जो बाबा के लक्षण हैं उनकी अनुभूति होने लगती है। क्योंकि विशेष रूप से बाबा इस समय हम सब बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बल बरते हैं। लेकिन तो है, लेकिन बल भी कैसे बढ़ेगा, या बाबा से प्यार भी कैसे बढ़ेगा, या शक्ति की महसूसता कैसे होगी, उसके लिए कुछ धारणाओं की तो जरूरत पड़ती है। बिना धारणाओं के, बिना चिंतन के, बिना अटेंशन के हमारी प्रगति नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं है कि बाबा हमारे सिर पर हाथ रखेंगे और हमारा सारा बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। श्रीमत ही उसका हाथ है। तो कदम कदम पर अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। जो भी हमारी धारणाएं हैं अमृत वेले से रात्रि तक, या फिर स्थूल धारणाएं हैं, उन धारणाओं के प्रम जितना अटेंशन देते हैं उतना स्वतः हमारी प्रोग्रेस होती है, सोन्नति होती है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि दिनों दिन परिस्थितियां भी अपना रूप अलग अलग तरीके से हमको दिखा रही हैं, और उन परिस्थितियों में मन को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा से हमारा बुद्धि योग निरंतर जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो मन में वो जो ईश्वरीय रस है वो भरेगा नहीं। सुख शांति की जो सच्ची फीलिंग है वो हमें उसकी महसूसता नहीं होगी। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी। तो कदम कदम पर अटेंशन रखना बहुत अनिवार्य है। तो देखेंगे हम मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या करें आखिर, क्योंकि सारा जो हमारा योग की प्रक्रिया है या योग के जो स्टेप हैं वो सारा मन के ऊपर आधारित है। जब तक हमने अपने मन में शक्तिशाली संकल्पों का संग्रहण नहीं किया तब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही मन में बहुत सारे इधर उधर के संकल्प भर के रखे हुए हैं, चाहे वो देह की दुनिया के हैं, देह के संबंधों के हैं, अपने पुराने संस्कारों के हैं, कोई ऐसी आदतें हैं, पुराने स्वभाव हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है, और उनसे छूटे बिना हम ऊपर उड़ नहीं सकते क्योंकि मन को बांध के रखा हुआ है। तो मन रूपी पंछी लंबी उड़ान भरे, ऊंची उड़ान भरे, उसके लिए जो रस्सियां बंधी हुई हैं अनेक प्रकार के बंधनों की, उनको तो काटना पड़ेगा, और वो कैसे कटेंगी? योग बल से, याद की यात्रा से। और याद की यात्रा भी कैसे हमारी निरंतर होगी, एक रस होगी, अचल अडोल होगी, निर्विघ्न होगी, निरंतर होगी, उसके लिए विशेष इस मास में हम तो विशेष पुरुषार्थ करें, क्योंकि सारे साल का ये जो महीना है ये फाउंडेशन है। जैसी हम आदत डालेंगे वो स्वतः ही काम करती रहेगी, इसलिए कहा जाता है ना कोई भी आदत डालने के लिए 21 दिन लगते हैं। तो ये हमारे हाथ में है, सारा महीना हम अच्छा पुरुषार्थ करें और सारे साल में हमारी वो आदत स्वतः काम करती रहे। इसलिए बाबा ने कहा बार बार क्या करो, 10-10 मिनट का 24 बार अभ्यास करो। बहुत भारी काम दे दिया, 24 बार माना 4 घंटे हो जाते हैं। तो सारे दिन में कम से कम 4 घंटे का योग चाहिए। ऐसा नहीं हमको 10 मिनट किया फिर उसको टिक किया दूसरे 10 मिनट किया। अगर हम सारे दिन में 4 घंटा योग करते हैं तो वो भी 24 बार हो जाता है, क्योंकि घरों में तो इतनी व्यस्त जीवन शैली होती है, दिनचर्या होती है कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अमृत वेला तो हमारे अपने हाथ में होता है। और सारे दिन में भी कुछ समय ऐसा होता है जहाँ हमारा मन खाली होता है, जहाँ हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अभ्यास, राज्यों का अभ्यास कर सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, बाबा से जुड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे हमको प्रयोग करने हैं स्वयं के ऊपर, हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है किसी भी तरीके से, और योग में नवीनता लानी है, क्योंकि ये कि ढर्रे पर चलते रहेंगे तो मन को फीका फीका लगने लगता है। तो योग के नए नए प्रयोग करने हैं। तो अभी इस क्लास में विशेष हम सब योग के ऊपर ही नए नए प्रयोग करेंगे। वैसे तो सभी योग के प्रयोग करते ही हैं, अपने अपने तरीके से सभी योग लगाते होंगे, लेकिन हमारे मन की जो टेंडेंसी है, जो मानसिकता है, वो स्थूल रूप से हम महसूस करना चाहते हैं उसको। तो जो क्योंकि योग है सूक्ष्म, उस सूक्ष्म योग को हमें अपने स्थूल में अनुभव करना है तो उसके लिए सबसे पहली धारणा तो है साइलेंस के बल को बढ़ाना है। जितना हो सके उतना हम कम बोलें। कहा जाता है स्पीच को सिल्वर कहा जाता है और साइलेंस को गोल्ड, लेकिन एक उससे भी ऊपर स्थिति है, कौन सी? कंट्रोल्ड स्पीच, जो आवश्यक बोल हैं केवल वही बोलें, उसको डायमंड कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कर्म क्षेत्र पर आ रहे हैं और हम बोलना चालना बंद कर दें। कर्म क्षेत्र में आते हुए भी हमारे मुख से अनावश्यक बोल ना निकले, व्यर्थ वाले बोल, नेगेटिव बोल या वातावरण को प्रदूषित करने वाले बोल, किसी को कटाक्ष करने वाले बोल, व्यंग्य वाले बोल, दुख देने वाले बोल, ये बोल हमारे मुख से ना निकले। तो साइलेंस का अर्थ ही है कि हमको बार बार अपने साइलेंस, जो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, वहाँ हमें लंबे समय तक वहाँ रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि इस संसार में रहने का अभ्यास तो बहुत है, आदत पड़ गई है। जैसे बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी नेचुरल नेचर ही कौन सी देही मान्य स्थिति की, 31 तारीख की मुरली में था ना, जैसे देहवान के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, स्वतः होता है, तो ऐसे हमारे अंदर ही अंदर पुरुषार्थ की रफ्तार ऐसी चलती रहनी चाहिए कि अंदर ही अंदर हमको देहवान से, देह अभिमान से डिटैच होने का पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। एक सेकंड में शरीर से डिटैच हुए और अलग अलग स्थानों पर टच करना है, जैसे बाबा को परमधाम में टच कर सकते हैं, एक सेकंड में शांति स्तंभ का अनुभव कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। एक सेकंड में शांति स्तंभ को टच किया, सारी शक्तियां स्वयं में भरी और फिर वापस अपने देह में, एक सेकंड में बाबा के कमरे में पहुंचे, फिर वापस अपने देह में, एक सेकंड कुटिया में पहुंचे, वापस अपने देह में, एक सेकंड हिस्ट्री हाल का अनुभव किया, एक सेकंड में अव्यक्त वतन में चले गए, एक सेकंड में बाबा का वरदानी हाथ स्वयं के सिर पर अनुभव करना, एक सेकंड में इस शरीर से बिल्कुल डिटैच पूरी सृष्टि की परिक्रमा करना, एक सेकंड में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, एक सेकंड में साक्षी स्थिति का अनुभव करना। तो जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, इसमें हम अपने मन को बिजी रखेंगे तो फिर वही स्थिति हमारी लंबे समय के पुरुषार्थ की आदत बन जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी आदतों से ही बड़ी आदत का निर्माण होता है। तो हमको लंबे समय तक अनुभव करने के लिए शांति धाम की सैर करनी है बार बार, जैसे इस संसार की सैर करते हैं, ऐसे योग में बैठे बैठे महसूस करना है कि मैं सीधा शांति धाम पहुंच गया हूं। जैसे हम यहाँ संसार में सैर करते हैं तो सैर करते करते भी बहुत प्रकार के संकल्प चलते हैं, सोच चलती है, उसी तरह की सोच परमधाम में करनी है, अर्थात लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। मान लो हम परमधाम में सैर कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे, ये देह तो ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर भले वो परमधाम तो बीच रूप बसता है, लेकिन इस संगम युग पर तो हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं ना। परमधाम बाबा को देखते हैं, कैसे देखते हैं? इन आंखों से देखते हैं, आत्मा को तो आंखें हैं नहीं, तो कौन जा रहा है ऊपर? सूक्ष्म शरीर तो महसूसता कर रहे हैं। तो यदि हम परमधाम में सैर कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे? सैर करने से क्या क्या होता है? तंदुरुस्ती बढ़ती है, शरीर अच्छा रहता है ना, मन फ्रेश हो जाता है, तरोताजा लगता है, मन शक्तिशाली, शरीर शक्तिशाली बन जाता है, बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमको परमधाम की सैर करनी है तो कितने फायदे होंगे? मन शक्तिशाली हो जाएगा। तो सैर करते क्या सोचेंगे? जैसे यहाँ सैर करते सोचते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है, सारी हवा प्रकृति की हमको टच कर रही है, धरती से हम स्पर्श में हैं, आसमान के नीचे हम चल रहे हैं, उसी तरह से परमधाम में अगर हम सैर कर रहे हैं तो हमें सोचना है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा मुझ आत्मा में प्रवेश करती जा रही है, पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन, वो शांति धाम के पवित्र वाइब्रेशन सारे मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं, वो सारी एनर्जी, वो सारी शक्ति से मैं आत्मा फुल चार्ज होती जा रही हूँ, नए उमंग उत्साह का संचार हो रहा है, और वो करते करते इस संसार से हम निरंतर हमारा नाता टूटता जाएगा, अर्थात हमारी जो स्मृतियाँ हैं इस संसार से जो बंधी हुई हैं वो स्वतः टूटती जाएंगी, क्योंकि परमधाम का जो सुख है वो बहुत ऊंचा सुख है। उस सुख के आगे ही संसार के सारे सुख फीके हैं, तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। वो परमधाम का जो सुख है, घर में रहने का कितना सुख मिलता है। कोई भी व्यक्ति बाहर घूमने जाता है, भले वो जितने मर्जी पैसे खर्चे, लाखों रुपये खर्च करे, लेकिन चैन की नींद कहाँ आती है? अपने घर में आती है। तो इस संसार में हम जितना मर्जी घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमको जो असली शांति की महसूसता करनी है वो परमधाम में करनी है। और क्यों? क्योंकि हमको अब वापस लौटना है। तो जहाँ लौटना होता है उसको तो याद करना पड़ता है ना। यात्रा पूरी हो रही है, अभी यात्रा पूरी हो रही है, तो वापस घर की निरंतर स्मृति हमारी कायम रहे। तो घर के बारे में बार बार सोचना है, उस शांति धाम में रहने का प्रयास करना है, समा लेना उसको स्वयं की आंखों में। जैसे आज की लवलीन अवस्था का अनुभव था ना, क्या अनुभव था आज की लवलीन अवस्था का? क्या पॉइंट था? बाप से स्नेह है, उसके लब में लीन होना, तो क्या करो, अपने नैनों में संभालो, है ना, बाप को अपने मुख में संभालो, अर्थात उसके ही वचन हमारे मुख से निकले, वो ही हमारी आंखों में समाया रहे। तो ये भी योग में बहुत अच्छा प्रयोग है, आंखें बंद करके जैसे बाबा को अपनी आंखों में समा लेना है और देखते रहना है कि बाबा हमारी आंखों में घूम रहा है, वो ज्योति बिंदु, वो सर्वशक्तिवान, उसकी सर्वशक्तियाँ मुझ आंखों में समाती जा रही, मेरी आंखों में समाती जा रही हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। वो सारी शक्तियाँ हमारे पूरे शरीर में, हमारी नसों में, हमारी रगों में प्रवाहित हो रही हैं करंट की तरह, और वो सारी शक्तियाँ हमारे शरीर को भी क्योर कर रही हैं, सारे भी दुख दर्द बीमारियाँ समाप्त हो जा रही हैं, क्योंकि वो सुप्रीम सर्जन है। तो इस संसार की जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ वो स्वतः खत्म हो जाएंगी। छोटी मोटी बीमारियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन अगर हमारी योग की पराकाष्ठा है, स्थिति अच्छी है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, आदत है, तो हम छोटी मोटी बीमारियों में हलचल में नहीं आएंगे। छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो वही चिंतन चलता रहता है, बीमारी का चिंतन ज़्यादा चलेगा और अपनी स्थिति का चिंतन कम हो जाएगा। तो जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, स्थितियाँ अनुकूल है हमारे, तब तक हमको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाता है। तो ये गिफ्ट मिला हुआ हमको भगवान की तरफ से सेवा के अर्थ, ये शरीर सामान्य शरीर नहीं है, देवताओं से भी उत्तम ये शरीर है। भले देवताओं की काया कंचन होंगी, लेकिन देवताएं भगवान की सेवा नहीं करेंगे, वो सृष्टि का कल्याण नहीं करेंगे, सृष्टि को भगवान का परिचय नहीं देंगे। अभी हमारा जो जन्म है, बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण चोटी हो, तो इतना ऊंच श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तो वो ऊंचे सोमान का नशा, जितना सोमान होगा तो क्या होगा, 31 तारीख की मूल्य में था, जितना तुम बच्चे सोमान में रहेंगे उतना डैश होता जाएगा, क्या क्या होता जाएगा, हाँ, देह अभिमान खत्म होता जाएगा, देह का भान खत्म होता जाएगा, और वही तो हमारा मेन पुरुषार्थ है। तो सोमान को भी केवल रटना नहीं है, उसका चिंतन करना है। बाबा ने कहा सोमान की माला फेरते रहो, सोमान में स्थित होते रहो, तो क्या होगा, बहुत डैश आएगा, क्या बहुत मजा आएगा, बाबा ने मुरली में कहा कि नहीं। तो ऐसे पॉइंट अगर याद ही नहीं रहेंगे तो सोमान की माला कैसे फेरेंगे। एक ही कोई सोमान पकड़ लेना है कि मैं भगवान के नैनों का नूर हूँ, या वो मेरे नैनों का नूर है, तो उसको अपनी आंखों में बसा लेना है, और हम उसकी आंखों में बसे हैं, हम दिल तक तनशीन है उसके, या वो मेरा दिल तक तनशीन है, उसको अपने दिल में बसा लेना है। तो स्थूल रूप से उसकी महसूसता करनी है, कि उसकी सारी शक्तियाँ महसूस करना है, कि हमारे रग रग में समाती जा रही हैं, हमारे हाथों में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, सिर में, उसकी सारी शक्तियाँ समाती जा रही हैं, वरदानों की बरसात होती जा रही है ना, निरंतर वरदानों की बरसात। भले अपने सिर पर सवेरे सवेरे हाथ रख लेने का है, क्योंकि स्थूल में शरीर की हलचल नहीं होती कई दफ़ा, और संकल्प नहीं चलते तो शरीर दूसरी अवस्था में चला जाता है, कौन सी, नींद की अवस्था में। तो शरीर की हलचल भी आवश्यक है, अगर मन की हलचल हमारी बिल्कुल रुक जाती है तो शरीर भी दूसरी तरफ चला जाता है। मन में शुद्ध संकल्पों का खजाना चाहिए, भंडार चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ वो ज्ञान का जो अमृत है वो टपकता रहेगा, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहेगा, नहीं तो दूसरे दूसरे संकल्प चलते रहेंगे। तो महसूस करना सवेरे सवेरे भगवान का हाथ ऊपर से आया, आकाश को चीरते हुए एक बहुत बड़ा हाथ आया, लाइट का हाथ, और सीधा हमारे सिर पर रख दिया। और कितने वरदान आ रहे हैं, जितने हमारे सिर पर बाल है ना उतने वरदान आ रहे हैं, ऐसे महसूस कर देना। और जिसके सिर पर बाल नहीं हो क्या करेगा, उसकी उसमें एक्स्ट्रा वरदान आ रहे हैं, है ना। तो महसूस करना ऐसे कि सारे भगवान की पूरी शक्ति मेरे में समाती जा रही है, नवीनता लानी है उसमें, वो मेरी आंखों में समा गया है, रग रग में उसकी शक्तियां समाती जा रही हैं, उसका प्यार बरस रहा है, उसकी खुशी, वो खुशी का खजाना है, अतीन्द्रिय सुख का स्रोत है, वो सारा मुझ में समाता जा रहा है, मेरी और उसकी दूरियां समाप्त हो चुकी हैं अभी, और उससे हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। और जिससे प्यार हमारा होता है तो उसकी बात को जीवन में स्वीकार करना मुश्किल नहीं लगता है। पुरुषार्थ में मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हमने बाबा की बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। मुरली में ढेरों बातें आती हैं लेकिन याद कितनी रहती हैं, थोड़ी सी रहती हैं। तो अर्थात हमारा उससे दूरी बनी हुई है अभी तक। जिससे प्यार होता है तो उन दोनों के बोल दिन प्रतिदिन मिलते जाते हैं, दोनों के संस्कार दिन प्रतिदिन मिलते जाते हैं, दोनों दिन प्रतिदिन साथ साथ रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक जैसे हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ बाहर वाले भी आते हैं तो यहाँ आके क्या अनुभव करते हैं, सब वाइट कपड़े दिख, सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं, क्योंकि सभी ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, सभी योग कर रहे हैं, सभी सेवाएं इकट्ठी कर रहे हैं, सभी बाबा को याद कर रहे हैं, तो संस्कार सबके जैसे एक जैसे होते हैं। तो उसी तरह से लंबे समय तक हम बाबा की तरफ, हमारा अगर बुद्धि योग है तो हमारा स्नेह स्वतः बढ़ता जाएगा। स्नेह बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो वो कहता है उसके ऊपर थोड़ा तो अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के स्नेह से हमको क्या मिला, दुख, धोखा, टेंशन, परेशानी, अशांति, घृणा, नफरत। तो जानने के बाद भी अगर हमने उसी को फिर पकड़ने हैं बार बार, कल बताया था ना एग्जांपल कि बिल्डिंग तो नई बनानी है लेकिन पुरानी तोड़नी नहीं है, तो फिर नई कैसे बनाएंगे। तो मनम हमको स्थिति तो अचीव करनी है ऊंची, लेकिन पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मन को बांध के रखा हुआ है, तो स्थिति का अनुभव कैसे हुआ। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। तो उसका महसूस करना है 24 आवर, परमात्मा हमारा संगी है, साथी है, उसका वरदानी हाथ, उसकी वरदानी दृष्टि, उसके वरदानी बोल मेरे में समाते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो समानता बढ़ती जा रही है, समीपता बढ़ती जा रही है। तो महसूस करना है स्थूल रूप से, जैसे गीत में कहते हैं तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे अंग संग हो। तो गीत केवल शब्दों तक ही थोड़ा सीमित रखना, उसकी महसूसता करनी है। अगर हम अभी संगम पर महसूस नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो उसको स्थूल रूप में अनुभव करना है, यही समय है उसके अनुभव का, अभी अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और समय का तो भरोसा नहीं है, बाबा कहते अचानक कुछ भी हो सकता है, देख रहे हैं परिस्थितियां संसार की, है ना, और सब झेल चुके हैं उसको भी, और आगे भी परिस्थितियां निर्माण उस तरह की चालू हो गई हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है, यहाँ के यहाँ वहाँ के वहाँ रह जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए जो भी हमारे पास ये समय है, वरदानी समय है, बहुत अमूल्य टाइम है, ये वाला हमारा टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। तो हमको साइलेंस का अभ्यास बढ़ाएं, क्योंकि साइलेंस की दुनिया में जाने के लिए लंबे समय से हमको अपने मन को इस संसार के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है। तो स्वयं को देखना है कहाँ कहाँ हमारा सारे दिन में व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ बोल जा रहे हैं, व्यर्थ एनर्जी जा रही है। कल की मुरली में बताया ना बाबा ने जादू मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया था, हाँ, शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं, ये जादू का मंत्र है। तो दूसरों के प्रति शुभ भावना रखने से पहले क्या करना है, स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति शुभ भावना रखना। अर्थात हमारा जो बताया समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, एनर्जी, वो व्यर्थ नहीं जाए, अर्थात ईश्वरीय अर्थ जाए, सेवा अर्थ जाए। तो हम स्वयं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख रहे हैं, और स्वयं के स्वयं भी दुआएं वो बहुत पावरफुल काम करती हैं। दूसरों से दुआएं लेना भी आसान काम है, लेकिन स्वयं से दुआएं लेना वो थोड़ा कठिन काम है। माना स्वयं का मन गवाही दे कि हाँ, हम श्रीमत अनुसार, आज्ञा अनुसार दिनचर्या पर चल रहे हैं। तो स्वयं के प्रति भी ये जादू का मंत्र काम करते रहना चाहिए। उसे बताई थी ना 10 बातें बताई थी, कौन कौन सी, ये 10 बातें 10 फायदे हो जाएंगे उसे, वो तो बाबा ने मुरली में बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो कल 10 फायदे कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले वाइब्रेशन फैलेंगे, वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा। जब भी हम शुभ भावना, शुभ कामना या शुभ दुआओं के संकल्पों के साथ मेडिटेशन करेंगे या राजयोग का अभ्यास करेंगे या आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं, तो हमारे मन से निकलने वाले जो प्रकंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो इस पूरे वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना देंगे। तो और दूसरी बात, एनर्जी बच जाएगी हमारी, जो भी शक्तियाँ वेस्ट जा रही हैं वो बच जाएंगी और ये आत्मा ताकतवर शक्तिशाली हो जाएगी, बलशाली हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरी बात, समय बच जाएगा, समय जो वेस्ट जा रहा है वो बच जाएगा हमारा। चौथी बात, मेहनत कम होगी, मेहनत होगी लेकिन कम मेहनत लगेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं। और पांचवी, सफलता ज़्यादा मिलेगी। और छठी बात, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगेंगी, है ना? नहीं, बड़ी बातें छोटी लगेंगी। तो मैं हाँ कैसे मिला रहे आप? गड़बड़ कर दिए ना? देखो मन कैसे हाँ में हाँ मिलाने की रेडी रहता है, लेकिन सामने से क्या बोला जा रहा है वो नहीं सुनते। जैसे बाबा हाथ खड़ा करने के लिए कहते हैं तो बिना सोने समझे हाथ खड़ा कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। और क्या होगा? दिल शिकस्त नहीं होंगे। और क्या होगा? हलचल समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा? संगठन में रहने की आदत पड़ जाएगी। और जो संगठन में जहाँ कोई संस्कारों का टकराव है, तो हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दुआओं के जादू मंत्र से वो संस्कार दूसरे के दब जाएंगे और सामना नहीं करेंगे। और लास्ट में क्या था? विहंग मार्ग की सेवा होगी, अर्थात बहुत फास्ट गति से वाइब्रेशन फैलेंगे, बहुत तीव्र गति से वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। तो कितना फायदा है कौन से मंत्र से? केवल एक ही मंत्र है ये, तो कितने ढेरों सारे मंत्र हैं। अब ओम शांति का मंत्र है, इससे क्या क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। और क्या होगा? तन भी शांत हो जाएगा। तन दो तरह से शांत होता है, एक परमानेंटली शांत हो जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र है, तो हमको अपने चिंतन को बढ़ाने के लिए ऐसे यूज करना उसको, मन को। ये तो बाबा ने उसमें 10 बातें बताई, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जहाँ हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो स्वयं का जो जीवन है वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, है ना? और हमारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हमारे संकल्प ही स्वयं को बांधने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो हमारा जो मन है वो अनेक प्रकार की उलझनों से मुक्त हो जाएगा, मन लंबी उड़ान भरने का आदति बन जाएगा, मन की उड़ान परम धाम तक पहुंच जाएगी, बाबा को टच करने लग पड़ेंगे। ये शुभ भावनाओं, शुभ दुआओं का, शुभ कामना का अगर जादू मंत्र हम निरंतर स्मृति में रखते हैं तो इस चिंतन को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो योग है वो केवल खाली बैठ के नील अवस्था में बैठने का नहीं है, कुछ तो स्टार्टिंग में चिंतन करना पड़ता है। हाँ, चिंतन करते करते जब हमारा मन किसी एक रस अवस्था में स्थित हो जाता है, तो फिर उसी अवस्था में डूबने लग जाता है, उसी अवस्था में बीज रूप की अनुभूति करता है। और बीज रूप अवस्था अर्थात परम धाम में हम रुक गए हैं, और वहाँ रुक कर क्या करेंगे? वहाँ रुक कर बहुत शक्तिशाली स्थिति होती है, और इस संसार में आने के लिए फिर मन नहीं करता है। इसलिए सभी महसूस करते होंगे, जब भी योग के बाद उठते हैं, जब अच्छा योग होता है, तो बोलने को मन करता है? नहीं करता है। अगर सामने वाले बोलता है तो क्या लगता है कि क्यों बोल रहा है ये? तो उस परम धाम की जो अवस्था, उसको हमको बार बार महसूस करना है, परम धाम को स्पर्श करना है, है ना? जैसे घर की दीवारों को हम स्पर्श करते हैं ना, ऐसे परम धाम में भी अपना एक घर बना देना है, उसको स्पर्श करना है। कितना अच्छा घर है, वो प्योर है, एकदम शीतल है, कितने अच्छे अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, शांति के, शक्ति के, खुशी के, वो सारे वाइब्रेशन मुझ में समाते जा रहे हैं। स्थूल योग करना है, परम धाम में स्थूल योग है, तो सारा सूक्ष्म ही है, लेकिन वो सूक्ष्म योग हमारे स्थूल में समाता जाएगा और उसका हमको रस बैठना लगेगा। परम धाम के या निर्वाण धाम के सारे के सारे वाइब्रेशन मुझ में समाते जा रहे हैं, और मेरी वाणी भी है इस संसार से उपराम होती जा रही है, निर्वाण धाम का अनुभव है ना, तो सारी उसके ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, शक्ति, वो सारे मुझ में समाती जा रही है, और चलते फिरते भी उसका अनुभव करना है। जैसे आज का प्रधान कौन सा था, हाँ न्यारा प्यारा डबल लाइट। तो वो अवस्था का अनुभव हमको करना है, चलते फिरते महसूस करना है कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, ये लाइट की काया है, क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। कल बताया था ना, जब तक मृत्यु नहीं होती है तो दूसरा जन्म मिलेगा नहीं, अर्थात जब तक हम इस संसार से मरे नहीं हैं तो ये हम नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, तो नई दुनिया का अनुभव कैसे करेंगे। पुराने जीवन की स्मृतियों से मृत्यु चाहिए, पुराने संस्कारों का एकदम किनारा उनसे, जैसे पुराने संस्कार मर चुके हुए हैं, नए संस्कारों का जागरण हुआ है, नए ज्ञान की रोशनी मिली है, नई आत्मों का निर्माण कर रहे हैं, तो नवीनता हमारे जीवन में आएगी तो पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, तो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनती जाएगी, तो नवीनता चाहिए। इसी तरह से सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है ना, जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा बैठे हैं, बाहें पसारे बैठे हैं, महसूस करना कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, या ये वाले हाथ, दोनों हाथ बाबा के हाथों में हैं और सारी शक्तियाँ ट्रांसफर हो रही हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, है ना, जैसे पूर्वज वहाँ सामने बैठे हुए हैं और सभी पूर्वजों का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। कितने सारे पूर्वज हैं, जितने भी आते सारे, जैसे बाहर दादियों के फोटो लगे हुए हैं, 21 फोटो बाहर, है ना, तो वो स्मृति में रखना है, वो सारी की सारी शक्तियाँ, और सुंदर ज्ञान अपना योग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पूरे ब्राह्मण परिवार का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, है ना, या अपना हाथ ही सब ब्राह्मणों के सिर पर है, सूक्ष्म में करना है, क्योंकि हमारे हिसाब किताब किसके साथ है, ब्राह्मणों के साथ हैं, तो चुकतू करने हैं प्यार प्यार से, खुशी खुशी से, नवीनता से। इसलिए कहा ना, रोज माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना भी है, और दिल की दूरियों को समाप्त करना है, नहीं तो दिल की दूरियां बढ़ती जाती हैं, हमारे बाबा से भी दूरियां बढ़ती जाएंगी। अगर ब्राह्मण परिवार से हमने दूरी बनाने की कोशिश की तो बाबा का प्यार भी बहुत दूर जाता जाएगा, अर्थात अगर ब्राह्मणों से हम दूरी बना रहे हैं, भगवान से दूरी बना रहे हैं, उसके चयन पर जैसे हम उंगली उठा रहे हैं कि इसको क्यों चुना, इसमें तो दिखे, कल बताया ना, ये सारे अवगुण ही अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान के चयन बहुत ऊंचा चयन है, उसने ऐसे थोड़ा चुन लिया। सभी अपने आप को चेक करो, हमारे में क्या खूबियां थी, ढेरों खामियां थी, लेकिन भगवान ने हम सबको चुन लिया, और जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन आए, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी वृत्ति बदल गई, हमारे संकल्प विचारधारा बदल गई है, सोच बदल गई है, हमारा व्यवहार बदल गया, बर्ताव बदल गया, कितने सारे परिवर्तन हुए, मिराकल हुआ कि नहीं, जादू हुआ कि नहीं तो संसार में इस मार्ग पर चलना कोई सहज काम थोड़ा नहीं है। इतनी ऊंची ऊंची धारणाएं हैं जिसको संसार के साधु सन्यासी भी नहीं कर पाए, और बाबा ने हम सबको उन्हें उन पर चलना कितना आसान कर दिया, तो कितना सहज हो गया काम, तो कितना परिवर्तन हो गया, तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। तो दूरियां नहीं बढ़ानी हमको, भगवान से अगर नजदीक जाना है तो ब्राह्मण परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। हाँ परिस्थितियां आएगी, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने हैं, सबके एक जैसे ही हो भी नहीं सकते, और ना ही कोई हमारे अनुसार चल सकता है, ये हमको हमेशा याद रखना है। नहीं तो घरों में क्या होता है, अधिकतर हम सोचते हैं कि घर वाले हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, या बच्चे हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, इतना ऊंचा बाबा का ज्ञान है, इनको ज्ञान में चलना चाहिए। जरूरत नहीं है स्वयं को ज्ञान में अच्छी तरह चलाना है, वो अपने आप चलेंगे। उनके सामने हमारा जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन रूपी किताब के पन्नों से पढ़कर अपने जीवन को ऊंच बना सके, उनको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अर्थात हमारे बोल उनके प्रति इतने प्रेममय हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने हृदय विदारक हों कि उनके हृदय को भेद दें सीधा, और वो तब जाएंगे जब हम स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करने की अटेंशन रखेंगे। अगर हम स्वयं को परिवर्तन कर रहे हैं, भले हम बैठे हैं योग में भी सब है, लेकिन जो नेचुरल हमारी नेचर होनी चाहिए, जो बाबा ने कहा देवताएं नेचर होनी चाहिए, मीठे होने चाहिए, मीठे बोल होने चाहिए, स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाप मीठा है, मीठे थे मीठे बाप के बच्चे, कड़वे तो कड़वे हों तो क्या चलेगा। तो देखना कौन कौन सी कड़वाहट हमारे में है, अभी स्वयं को मीठा बनाने का प्रयास करना है, और दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। हाँ शुभ भावना शुभ कामना में कमी नहीं आनी चाहिए, जब स्वयं की शुभ भावना स्वयं के प्रति हमने अच्छी रख दी है, स्वयं को प्यार करना सीखना है, क्योंकि हम स्वयं को प्यार बहुत कम करते हैं, या तो स्वयं की कमी कमजोरियों को देखते रहेंगे, पुरानी जो स्मृतियां हैं उनको देखते रहेंगे, और गिल्ट कॉन्शियस बढ़ती जाती है, नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो स्वयं से प्यार करना सीखना है, भगवान से प्यार अपने आप ही हो जाएगा। स्वयं से प्यार अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप को देखना है कि मैं आत्मा कितनी उज्ज्वल हूँ, कितना परमात्म प्यार बरस रहा है मेरे अंदर, भगवान ने कितने सारे खजाने भरे हैं, शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं का स्टॉक भरा है, मुझ आत्मा को उसने अनेक कर्म बंधनों से मुक्त कर दिया है। वो मुक्त होते देखना है, क्योंकि हमने पुराने कर्म बंधनों को पकड़ के रखा हुआ मन से, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। और जो इतने ऊंचे संबंध दिए बाबा ने अपने साथ जोड़े हैं, बाप ये एक संसार है, उस संसार में हम कम रहते हैं और इस संसार को पकड़ के रखते हैं। जाना हमको ऊपर वाले संसार में, लेकिन पकड़ा इस संसार को हुआ है, तो फिर कैसे हुआ? दोनों लड्डू तो हाथ में नहीं आएंगे, एक लड्डू ही आएगा। तो दोनों हाथों में अगर लड्डू पकड़ने तो ऊपर वाले दो लड्डू बना लेने, है ना? क्योंकि आदत तो पकड़नी है ना, कुछ न तो पकड़ना ही है। तो कुछ नवीनता चाहिए हमारे जीवन में, तो योग में भी हमको बहुत अच्छी अच्छी नवीनता है। जैसे बताया एक सेकंड का अभ्यास, एक सेकंड में गए बाबा से दृष्टि ली परमधाम में, परमधाम में भी दृष्टि ले सकते हैं, है? सूक्ष्म बतन में भी ले सकते हैं, कहीं भी दृष्टि ले, संगम युग और हम कुछ भी कर सकते हैं योग में। जैसे बाबा ने कहा तुम अपने दिल में बिसा लो, अब भगवान दिल में आके बसेगा क्या? तो उसका प्यार है ना, महसूसता है वो। तो हमको परमधाम में भी जैसे बाबा को हम टच किया या सूक्ष्म मतन बाबा से दृष्टि ली, आंखों में समाया और फिर अपने देह में आ गए एक एक सेकंड में। अब एक सेकंड में सीधा शांति बन की डायमंड डाल के स्टेज में पहुंच जाओ सभी। और इस ड्रिल से क्या होता है, इस बॉडी से हम डिटैच हो जाते हैं। जैसे हम दूसरी जगह के बारे में सोचते हैं तो इस बॉडी से डिटैच होते हैं, और उस जगह की एनर्जी यहां समाने लगती है सारी। जैसे हम बैठे बैठे अपने अपने लौकिक घर को याद करो, एक सेकंड में सारी स्मृतियां घूम गई और वो सारी एनर्जी अंदर आने चालू हो गई है। इसी तरह एक सेकंड में शांति उनके डायमंड हॉल में पहुंच जाओ, देखो बाबा आए हुए हैं, वो नूरानी आंखें, वो एकदम रूहानियत वाला चेहरा, चमकता हुआ चेहरा है, और बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आंखों में समाती जा रही है, मुझ आत्मा में समाती जा रही है। तो हमारी स्मृति चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? एक सेकंड की बात है। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति करना। और ये एक सेकंड का अभ्यास लंबे समय तक करते रहेंगे तो हम अंतिम अवस्था में उसी अवस्था से गुजरेंगे। फिर अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो फिर अंत में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी फिर जाना, कैसे जाएंगे फिर? तो एक एक सेकंड में, एक सेकंड में बताया यहाँ गए, शांति स्तंभ को पकड़ा हाथ से, सूक्ष्म में स्पर्श किया, एक कोना पीस जो टावर ऑफ पीस का स्पर्श किया, सारे दिव्य गुण मुझ में आते जा रहे हैं, है ना? वो याद की यात्रा का पूरी याद समाती जा रही है, वो पवित्रता के वाइब्रेशन मुझ में आते जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ के टावर ऑफ प्योरिटी का, सारी प्योरिटी मुझ में आती जा रही है, महसूस करो वहाँ उसको, मैं चैतन्य शांति स्तंभ हूँ, नए नए सुमान करने, मैं इस सृष्टि का केंद्र बिंदु हूँ, नए नए सुमान। तो जो केंद्र बिंदु होता है तो क्या होता है, वहीं से उसको पूरी एनर्जी जा रही पूरी सृष्टि को। तो जो हमारे संकल्प हैं वो संकल्प की शक्तियाँ पूरी सृष्टि में निरंतर जा रही हैं, वो प्रभावित होती जा रही हैं, वाइब्रेशन जा रहे हैं, क्योंकि 24 आवर हमारे से वाइब्रेशन तो निकलते रहते हैं। कौन से? जो हम सोच रहे हैं। मनसा सेवा करने के लिए कोई विशेष टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मनसा सेवा तो स्वतः होती रहती है। जो भी हमारे संकल्प हैं, बोल हैं, हमारा व्यवहार है, उसके वाइब्रेशन निरंतर इस धरा पर, इस वसुंधरा पर निरंतर फैलते जा रहे हैं, वो प्रकंपन निरंतर प्रवाहित होते जा रहे हैं। तो अपने संकल्पों को चेंज करना, नवीन संकल्पों से भरना है, है ना? बाबा के कमरे में एक सेकंड में बाबा से दृष्टि ली, वहाँ बैठे और चार्ज किया और सारे वाइब्रेशन स्वयं में भर लिए, महसूस करना जैसे पूरे मधुबन के वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं, अंग अंग में समाते जा रहे हैं, और सारी कर्मेंद्रियां स्थूल सूक्ष्म सारी शीतल होती जा रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा शीतल शीतल थे, लास्ट में बताते थे ना, जैसे बाबा का हाथ पकड़ते थे तो एकदम शीतल, है ना? कई बार हम दादियों से हाथ मिलाते थे, दादियाँ हाथ मिलाती थी, तो वाइब्रेशन ही अलग है, वो एकदम जैसे फरिश्ता बॉडी लगती थी वो। तो लंबे समय की साधना के बाद ये कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। तो महसूस करना है कि पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन, पूरे शांति धाम के वाइब्रेशन, पूरे सूक्ष्म बतन के वाइब्रेशन वो हमारे में समाते जा रहे हैं, सारे मधुबन के वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं। तो इस तरह से योग में अगर नवीनता होगी तो मन में रस बैठेगा, नहीं तो एक ही ढर्रे पर एक ही हम सामान लेके बैठ जाते हैं, मैं मास्टर साहब शक्तिवान हूँ। उसका विस्तार करना है, आज की मुरली की लास्ट लाइन थी, क्या लाइन थी? बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, वो तो स्लोगन था मुरली के लास्ट लाइन है, मीठे मीठे बच्चे। बोला ना एक भाई, एक बार चक्करदार बहन जी ने अनुभव सुनाया था ना कुछ दिन पहले, कि जैसे मीठे मीठे बच्चे आता था तो एक भाई बड़ा खुश होता था, और बहन जी ने को सुनाया उसने, बहन जी मुझे बड़ी खुशी होती है मीठे मीठे बच्चे। तो बहन जी ने सोचा बहुत प्यार उमड़ता होगा इसको, तो बोला क्यों? बोला मुरली पूरी होगी अभी मीठे मीठे बच्चे माना मुरली पूरी होगी इसलिए खुशी होती है। तो लास्ट लाइन क्या थी मुरली की आज, क्या लाइन थी? बाप कहते हैं मैं हूं सर्वशक्तिवान, मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। ये मुरली की लास्ट लाइन थी। तो सारे दिन में योग का कितना अच्छा अभ्यास था, क्योंकि सारे मुरली तो हाथ में आती नहीं है, कुछ तो दो चार पॉइंट आने चाहिए ना। तो वो सारे दिन में अगर वही हम अभ्यास करते रहेंगे तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो भी हो सौभाग्य। कुछ तो स्मृति रहनी चाहिए, है ना, या मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादाओं के लिए हम खुद निर्माण करें, खुद तैयार करें, कौन कौन सी मर्यादाएं हैं जो हमारे जीवन में निरंतर रहनी चाहिए। अगर मर्यादाओं की लकीर से हम बाहर निकलते हैं तो जैसे रावण सीता को उठा के ले गया, अर्थात हम इस पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, पुरानी स्मृतियों में, आत्मा जैसे दुखी है, पीड़ित है, रावण की शोक वाटिका में है। तो मर्यादाएं कौन कौन सी होती है उसके हम चिंतन करें, अर्थात अपने चिंतन को बढ़ाना है। कुछ ना कुछ तो चिंतन करेंगे तो इस देश से हम उपरामा अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ऊपर से अवतरित हो रहा है, और उस ज्ञान के साथ हम टच रहेंगे तो हमारी जो मन है, हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो भी ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा। जिसके बारे में सोचते हैं वहां तो मन बुद्धि जाता ना, तो बाबा के बारे में हम कितना सोचते हैं, सोचना है, देखना है वो कितना अच्छा है ना। जैसे बाबा ने एक बार बताया, अगर आप मन की डल करते रहेंगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, शायद 5 या 6 फायदे बताए थे। एक तो मन तंदुरुस्त रहेगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन की अवस्था एक रस हो जाएगी, अचल अडोल हो जाएगा, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ऐसे मन की ड्रिल करने से क्या क्या फायदे, ऐसे हम 100 फायदे निकालें। लंबा टारगेट रखना है और वो हो जाएंगे, और उसका अभ्यास करना है। जैसे मुरली में पॉइंट है उसको भी लिख लो और अपना भी चिंतन बढ़ाओ। अपना मटेरियल हमारे हाथ में होता है तो लगता है कि कुछ पुरुषार्थ हो रहा है, कुछ बाबा की कृपा हमारे पर बरस रही है। अगर हम अपना नहीं करते हैं तो फिर वहीं कहीं अपने को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो स्वयं को चिंतन को बढ़ाना है, क्योंकि बड़ी आवश्यकता है इसकी, क्योंकि संसार में तो काम धंधे में रहते हैं, चिंतन तो दूसरे प्रकार के बहुत सारे कदम कदम पर खड़े होते हैं, और वो करने भी पड़ते हैं, आवश्यक भी हैं। घर में जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, परिवार में रहते हैं, सबकी जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेवारियाँ हैं, उनको भी निभाना है। तो उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ तो अपने नए रास्ते का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम करते नहीं हैं तो फिर हमको उतना आगे बढ़ना हमारा महसूस नहीं होगा हमको। तो देखना है अपने पुरुषार्थ, निराधार पुरुषार्थ होना चाहिए, किसी का आधार नहीं, किसी का भी आधार नहीं, एक बाबा के सिवा। क्यों? हाँ, बाकी हम सबका इस ब्राह्मण परिवार के बीच में तो रहना ही है, सबकी विशेषताएं देखनी है, सबके साथ हमारा संबंध संपर्क तो है ही है, लेकिन हमारा बुद्धि और कनेक्शन, क्योंकि देन किसकी है, सबके अंदर जो गुण विशेषताएं किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, बाबा दे रहे हैं उसको। तो लेकिन कहीं ना कहीं कई बार एक तरफा हमारा बुद्धि हो जाता है। तो सीखना है हमको सबसे, कैसे दूसरे चिंतन कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम अपने चिंतन को उनके आधार पर आगे बढ़ाएं। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी का आधार नहीं बने, किसी की वेट नहीं करनी है इस पुरुषार्थ में। घर में भी होते हैं, जैसे हम काम धंधे से थोड़ा मुक्त हुए, बैठ जाओ अपने मेडिटेशन में, या घर से सेंटर जाना है या पड़ोस वाला भी क्या, तो उसकी वेट करते हैं, वो आएगा तो निकलेंगे, किसी की वेट नहीं करनी, निकल जाओ सीधा। अकेले रहने के सिद्धांतों पर चलना है, क्योंकि लास्ट में अकेले जाना है आपको। बाबा तो लेके जाएगा सबको एक साथ, लेकिन जाना तो अपने को अकेले ही है। तो लंबे समय से हमको ये आदतों का निर्माण करना है, अलोन, अकेले। तो चिंतन का सहारा तो सबका लेना है, लेकिन करना तो अपना ही है, अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो ये साइलेंस, जो ये जो समय चल रहा है, अव्यक्त मास जनवरी महीना, इसमें हम इतना अच्छा गहरा पुरुषार्थ करें कि वो हमारी आदत बन जाए, हमको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। जैसे बताया बाबा ने, मेहनत खत्म हो जाएगी कब, जब जादू मंत्र का, तो अपने एक जादू मंत्र की लिस्ट बनानी है। जैसे संसार में तांत्रिक क्या होते हैं, क्या करते हैं, जादू मंत्र कहते हैं ना। तो हमको ही बाबा ने सब बड़े से बड़े तांत्रिक बनाया है। कौन से तंत्र? अपने मन को वश करने का। संसार में जादू मंत्र किस लिए करते हैं? दूसरों को वश करने के लिए। लेकिन अपना ही मन नहीं हमारे वश में हो रहा है तो दूसरों को क्या करना? अपने मन को वश करने के लिए किस जादू मंत्र चाहिए कोई तो निकालने हैं वो। जैसे कल बाबा ने बताया शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ दुआएं, ऐसे मन मना भाव, ओम शांति, मध्य अजीब, ऐसे किस मंत्र निकालो, उनका विस्तार कीजिए। अपना मन जब उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये अपने आप वश हो जाएगा। वश करने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो तो स्वतः हो जाएगा जब हम उसको दिशा देंगे। और एक बार मन को रस बैठ गया, क्योंकि मन बुद्धि छोटे बच्चों की तरह है, जैसे माताएं अपने बच्चों को स्वभाव को समझती हैं कि इनको अगर ये चीज देंगे तो शांत हो जाएंगे, नहीं देंगे तो उत्पात मचाएंगे, ऐसे मन बुद्धि भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको हमको खिलौने देने हैं, ज्ञान योग के खिलौने देने हैं। उनमें अगर बिजी रखेंगे तो अपने आप मन बुद्धि को रस बैठेगा, बहुत स्थिर रहेंगे और आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाएगी, तो उसका चिंतन भी बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन और अतिंद्र सुख का अनुभव होगा। तो कितना समय बच जाएगा फिर, जो बाबा ने कहा समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, मेहनत कम होगी, सफलता ज्यादा होगी, छोटी बातें भी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, बड़ी बातें छोटी हो जाएंगी, ठीक है। अभी ठीक सुन रहे सभी? बड़ी बातें छोटी हो जाएंगी, कितनी छोटी हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगी। हाँ, और क्या होगा, विहंग मार्ग की सेवा होगी, संगठन में रहना आसान हो जाएगा। नहीं तो संगठन में इतने बड़े बड़े सबके स्वभाव संस्कार अपने, हम अपने संस्कारों को देखें कितने कुटिल संस्कार थे, लेकिन कैसे दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। तो भगवान का प्यार हमारे पर कितना बरस रहा है, लेकिन हम क्या होता है, हम अपनी कमियों में फंसे रहते हैं, अपने कंप्लेंट, शिकायतें छोड़ दो, लेकिन भगवान से जो प्राप्ति हो उसको तो पकड़ के रखो। हम उसको हम पकड़ते नहीं है और शिकायतों को पकड़ रहा हुआ है, या तो अपने बारे में कंप्लेंट है या दूसरे की कंप्लेंट भगवान के आगे करते जा रहे हैं। तो कंप्लेंट करनी नहीं किसी की भी, अब कंप्लेंट नहीं, अब कंप्लीट बनने का टाइम है। अपनी कंप्लेंट स्थिति में स्थित रहना है, संपूर्णता की स्थिति में, क्योंकि वास्तव में आत्मा तो है ही संपूर्ण, लेकिन कई तरह के पर्दे हैं जो अंदर आगे उसके आवरण है उसके अंदर, तो देखना कौन कौन से हैं उसके, देखना पर्दे के पीछे। आत्मा तो अपने आप में संपूर्ण ही है, लेकिन कुछ ऐसे विचारों की परतें हैं, ऐसे व्यर्थ संकल्पों की परतें जो आगे हैं, वो नहीं हट रही हैं। क्यों नहीं चिंतन हमारा चलता है? तो थोड़ा प्रयत्न करना, कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करते 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 नेचर बन जाएगी। देही मानी स्थिति की नेचुरल नेचर बन जाएगी, फरिश्ता स्थिति की नेचुरल नेचर बनती जाएगी, परमधाम में आने जाने का संस्कार बन जाएगा। जैसे घूमने फिरने की आदत कैसे हो जाती है, जैसे हमको कोई कहे घूमने फिरने से तुरंत तैयार हो जाएंगे, ऐसे हमको नई नई आदतें का निर्माण करना है। एक सेकंड में इस बॉडी से निकले और सीधा परमधाम में, बाबा ने जैसे पकड़ लिया उधर, जैसे बाबा ऊपर से छोड़ने, सूक्ष्म में अनुभव करना है कि वो लाइट का गोला, उस लाइट के गोले से एक हाथ निकला और मुझे आत्मा को पकड़ लिया उसने, उधरी महसूस करना उसका, और वो छोड़ ही नहीं रहा। बोला जब तक पावन पूरा नहीं हो तब तक छोड़ूंगा नहीं, अभी है ना। जैसे हुआ फिर छोड़ दिया एकदम और सीधा टक से इधर आ गए। किस लिए? इस संसार की सेवा करने के लिए, इस संसार में पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने के लिए, है ना। तो महसूस करना ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ आ रहा है और सीधा सिर के ऊपर आ गया, है ना, और परिवर्तन हो गया। सारे सबके जैसे शरीर लाइट लाइट के हो गए, क्योंकि शरीर तो दिखाई देंगे। तो अपने चिंतन की धारा को चेंज करेंगे, कुछ नए नए नवीनता का प्रयोग करेंगे तो जीवन में रस आएगा, उमंग सा आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी, ब्राह्मण जीवन का मजा आएगा, है ना। तो अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए विशेष इस महीने में अव्यक्त मास में हमको नवीनता खोजनी है। था ना 31 तारीख की मूल्य में, नया साल है तो नई बातें होनी चाहिए। तो ऐसे नई नई बातों की 100 बातों की लिस्ट निकाल दें। ऐसी योग की कौन सी ऐसी बातें हो सकती है नई नई जो अभी तक हमने की नहीं और कर किया जा सकता है वो, है ना। ज्ञान की ऐसी नई बातें, कैसे ज्ञान को याद रखने का तरीका, उसको तरीका निकाले अपने आप ही, ए बी सी डी अल्फाबेटिकली, ए से कौन कौन से शब्द मूल्य में आए, बी से कौन कौन से आए, या आज की मूल्य में बाबा ने जानवरों की बात की कौन सी थी, बोला उसमें जानवरों को लगा दिया है, किस में, सत्य में विजयते में, है ना, कोट आर्म्स। तो वो याद करना है कौन कौन से बाबा एग्जाम्पल देते हैं, उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं मुरली में, या मुरली के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर निकालें, या कोई नए वर्ड हैं, या जो सिंधी वर्ड आते हैं उन सिंधी वर्डों की शटनी कर दे सारे, या इंग्लिश के वर्ड आते हैं मुरली में उनकी शटनी कर दो। तो ऐसे ज्ञान योग रत्न खेलते रहेंगे उन रत्नों से, तो मुरली सुनने में रस भी आएगा। नहीं तो क्या होता है, मुरली कब शुरू होती है और मीठे मीठे बच्चे आएगा तो बड़ी खुशी हो जाएगी, पर फिर भी खुशी तो होती है कम से कम। तो खुशी हमारी निरंतर बनती रहनी चाहिए, है ना। बाबा भी खुश होता होगा, बच्चे इसी तरीके खुश तो हो रहे कम से कम। मुरली का काम पूरा हो गया। तो हमको नवीनता करनी, कुछ तो शब्द हमारे हाथ में हो, उसके आधार पर हमारा चिंतन बढ़ता रहे, बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहे, इस बेहद के ब्राह्मण परिवार से, यज्ञ से, सेवा से, ज्ञान योग से हमारा लगाव, लगाव कौन सा, शुद्ध लगाव, अशुद्ध नहीं, नए संबंधों का निर्माण नहीं करना है, डिटैच, एकदम डिटैच, अटैच भी डिटैच भी, जितना न्यारे उतना प्यारे, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जैसे डिटैच हो तो डिटैच हुए। अच्छा, ओम शांति। दया सिंधु की स्नेह में डूबी।